गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी लोग हमेशा इस अवसर की तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा अवसर हमारे जीवन में मिले जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई प्रयत्न कर सकें। हमने ऐसे बहुत से अवसर पिछले दिनों अपने जीवन में प्रयत्न करके प्राप्त किए हैं, जिनमें कि हमने बैठ करके अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी बातों पर विचार किया है। मैं उस बात को आज कंटिन्यू तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जिस प्रयोग की शुरुआत कर चुके हैं, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस प्रयोग से अनभिज्ञ हैं। मैं सोचता हूँ कि आज अपन थोड़ी सी बात तीर्थ पर कर लें। हमारे आचार्यों ने हमारे आत्मकल्याण के लिए तीर्थ और तीर्थ स्थानों की परिकल्पना की। वास्तव में देखा जाए तो रत्नत्रय ही तीर्थ है, और रत्नत्रय को धारण करने वाले जो आचार्य उपाध्याय और साधु जन हैं, वे ही वास्तव में तीर्थ हैं, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुर में लिखा है। हमारी कोशिश ऐसे ही जीवंत तीर्थ बनने की होनी चाहिए। आज अगर ऐसे तीर्थों की रचना किसी ने पूरे देश में की है तो वे आचार्य, हमारे आचार्य महाराज हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को अपने जीवन में अपनाने वाले जीवित तीर्थों को जन्म दिया है। हम सब उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। भगवान जिस तीर्थ का प्ररूपण करते हैं वह तीर्थ भी रत्नत्रय रूप ही है, लेकिन हम उस तीर्थ को अपने जीवन में, उस रत्नत्रय को अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें, इसके लिए कुछ स्थान भी जरूरी है। जिन स्थानों पर बैठ करके हम रत्नत्रय की आराधना कर सकें, और तब दो तरह से तीर्थों की संरचना हुई। एक वे जहां से कि कोई आत्मा रत्नत्रय की आराधना करके निर्वाण को प्राप्त होती है, वे सिद्ध क्षेत्र या कि निर्वाण क्षेत्र कहलाते हैं। समवेत शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, बाबापुर, कैलाश, ढेर सारे नाम हैं जहां से कि तीर्थंकरों ने रत्नत्रय की आराधना करके अपना कल्याण किया। हम वहां जाते हैं उन तीर्थों पर, तो हमारे भीतर भी ये जागृति आनी चाहिए कि ये वो स्थान है जहां से किसी ने रत्नत्रय की आराधना करके और अपने जीवन को स्वयं तीर्थ बना लिया। जैसे कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन हम करते हैं तो हमारी एक ही भावना होती है, होनी चाहिए, कि हम भी जिनेंद्र भगवान के जैसे ही बन जाएं, उतने ही श्रेष्ठ हम बन जाएं। ऐसे ही तीर्थ पर हमारी भावना होनी चाहिए, हमारे भीतर वही भाव पैदा होना चाहिए, पर होता नहीं है। तीर्थ अब हमारे लिए सुख सुविधा के बहुत अच्छे कहने चाहिए स्थान हो गए हैं। जिन लोगों के घर में पानी टपकता होगा चतुर्मास के दौरान, जिन लोगों ने कभी एक बहुत बढ़िया जीवन में रहने के लिए कमरा भी नहीं बना पाया होगा, उन्हें तीर्थ स्थान पर आकर के जितनी सुख सुविधाएं दी जाने लगी हैं या कि वे चाहने लगे हैं, मानसिकता सबकी यही बन गई है कि वे तीर्थ क्षेत्र पर आए हैं तो उन्हें पंचेंद्रिय और मन के विषयों की पूर्ति के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अब हमारे लोग भी चूंकि उन्हें उनसे कुछ पाना है, इसलिए उनके लिए वैसी सुख सुविधाएं भी जुटाने लगे हैं। जिन पांच इंद्रियों और मन के विषयों का त्याग करने की शिक्षा देने वाले हमारे आचार्य उपाध्याय और साधुजन तीर्थों पर आकर के अपना कल्याण करते हैं, उन्हीं तीर्थों पर हम अपने पांच इंद्रियों और मन के विषयों की सुविधा खोजते हैं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि तीर्थ हमारे जीवन को स्वयं तीर्थ बनाने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए होते हैं, हमें उनका वैसा ही लाभ लेना चाहिए। नैनागिर में मुझे याद है सन 78 के अंदर 78 में जब आचार्य महाराज ने चतुर्मास करा, वहां ठीक से व्यक्ति को रहने के लिए स्थान नहीं था, चौका लगाने के लिए पर्ची थी, पर्ची में जीव राशि भी बहुत आ जाती थी, कहीं से सर्प निकल आता था तो कहीं से बिच्छू निकल आते थे तो कहीं कुछ होता था, कहीं और जानवर घुस आते थे, अपने हाथ से जैसा बनता था व्यक्ति वैसा कर लेता था, लेकिन आनंद बहुत था। वो आनंद कैसे मालूम पड़ा, किसने बताया कि आनंद है? एक बार खुद साहू श्रेयांश जी आए आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए उस समय, और उनके लिए भी कमरा नहीं मिला, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे सके उनको, क्योंकि पहले से सारी भरी हुई थी। उन्होंने तो वैसे खबर कर दी थी, अब तो जो भी आता है पहले खबर कर देता है कि वो जो मैंने डोनेशन दिया था 11,000 और वो जो मैंने एक कमरे का कहा था वो मेरा कमरा, मैं आ रहा हूं, देखना डोनेशन दे चुके 11,000 लेकिन अभी भी मालकियत गई नहीं। हां, इससे क्या मालूम पड़ता है, मैं तो यही सोच सोच के रह जाता हूं दंग कि देखो तो हम लोगों की मानसिकता किस तरह दिनों दिन, फिर भी हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हो रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि शायद हम पहले से ज्यादा धर्मात्मा हो गए हैं। नहीं, बहुत गौर से अपने भीतर इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना आत्मा अवलोकन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने भीतर झांक के देखें कि हम पहले कितने संतोषी थे और अब हमारे भीतर पांच इंद्रियों और मन के विषयों के प्रति कितनी लोलुपता धीरे धीरे जागती चली जा रही है कि वो तीर्थ क्षेत्रों पर भी हम नहीं छोड़ पाते, हम वही अपेक्षाएं रखते हैं और जुटाने वाले भी वे सब चीजें जुटा रहे हैं। तब वे आए और आकर के पर्ची में उनको दरी बिछा दी गई, रुक गए, और अब तमाम असुविधाएं, कौन सी सुविधा कहें हम, हमारे सामने की बात है। लोगों से जो जितना बना, कोई ये तो नहीं कह पाया कि कमरा खाली है, है ही नहीं, उतने कमरे नहीं है कि किसी को हम वहां से हटा करके, और आप चूंकि बड़े हैं इसलिए आपको रुकाएं, बैठ के बाहर चतुर्मास का समय। और इतने ही नहीं, आचार्य महाराज को आहार देने का मन बन गया, और धोती जो उनने कभी नहीं पहनी होगी, एसी में बैठ करके जो भोजन करते हैं, देखना आहार देने के लिए जा रहे हैं, आचार्य महाराज को आहार दिया, फिर आचार्य के पास बैठे रहे 12:15 तक, वहां से नीचे जब जाने लगे तो लोगों ने कहा हमारे यहां चलिए, बोले कहीं नहीं जाऊंगा, उतनी देर में बहुत सी व्यवस्थाएं करी गई, उन्होंने कहा कहीं नहीं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं तो खाना खाएंगे, जहां आचार्य महाराज का हुआ है वही खाऊंगा। तो आचार्य महाराज का जहां आहार हुआ था, नमक भी नहीं था सब्जी में, दाल में, और कोई सामान विशेष नहीं था, चले गए वहीं पर भोजन करा और खूब आनंद से। लोग तो बड़े दुविधा में थे कि इतने बड़े सेठ जी और हम कछु व्यवस्था नहीं कर पाए, अब का पता कछु दान देत के नहीं देत। वही केलाने तो इतनी मेहनत करी थी, वही खो तो इतने तक लुआ ले आए थे कि भाई क्या सब तो आ जावे महाराज के सानिध्य में, आ जावे उसे तो नहीं आए महाराज के सानिध्य में, आ जावे तो कैसा तो हम जो है, और उनके पॉकेट में से किसी ना किसी तरह निकलवा ले। तो अब क्या करें, सब दुविधा में, और ये और भोजन कर लिया अब तो बिल्कुल ही नाराज हो जाएं वे बिना नमक का। लेकिन जब आचार्य महाराज के प्रवचन से पहले 2:30 बजे सभा में उनको खड़े होकर के बोलने का अवसर दिया गया, तब उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, आज मुझे लगता है कि व्यर्थ ही व्यतीत हो गया, मैंने तो भोजन भी एयर कंडीशन में खाया है, और भोजन भी वो जो कल खाया था आज रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन यहां मैंने आज जिस तरह आचार्य महाराज के आहार के बाद जो प्रसाद रूप में, और मानो कि प्रसाद ही है, हमारे यहां पर प्रसाद तो नहीं बढ़ता लेकिन एक तरह का प्रसाद की उनकी कृपा, हाँ, और मैंने जो वहां भोजन किया है, मैंने तो पूरे जीवन भर वैसा नहीं किया है, मुझे जो आज आत्म संतोष और आनंद प्राप्त हुआ है वैसा तो जीवन में कभी नहीं। लोग दंग रह गए कि वास्तव में शायद तीर्थ पर जो आत्मानुभव या जो आत्मानंद की प्राप्ति होनी चाहिए वो यही है, और तीर्थ इसीलिए निर्मित किए गए कि जिन पर हम अधिक से अधिक असुविधाओं के बीच, अधिक से अधिक विषमताओं के बीच भी समता का अनुभव कर सकें, जहां कुछ भी नहीं है, जहां सब प्रतिकूलताएं हैं, इसके बाद भी हमारा चित्त प्रसन्न और गदगद है। वास्तव में इस तरह की मानसिकता हमारी होनी चाहिए। आचार्य भगवंतों ने तो ये लिखा है कि अकारी से निवृत्ति होना ही तीर्थ यात्रा है। अकारी क्या है, 5 पाप अकारी हैं, करने के अयोग्य हैं। तो कहते हैं कि उनसे जब हम विमुख होते हैं तो वही तो तीर्थ यात्रा है। और एक तीर्थ वे हैं जिन पर किसी मूर्ति में या कि जिन पर किसी विशेष अतिशय के कारण और प्रभावना होती है, उन्हें अतिशय क्षेत्र कहते हैं। और या कि आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जहां तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान कल्याणक होता, जहां निर्वाण होता वो तो सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन जहां अन्य 4 कल्याणक होते हैं वे भी अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं। अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपन एक अतिशय क्षेत्र पर बैठे हुए हैं। वास्तव में अतिशय किसका है बताओ तो? अतिशय न क्षेत्र का होता है न किसी मूर्ति का होता है, अतिशय तो अपनी भावनाओं की निर्मलता का होता है, और शायद उन्हीं भावनाओं की निर्मलता से सारी चीजों में वैशिष्ट आ जाता है। हमें इन क्षेत्रों पर आकर के अपनी भावनाओं और अपने परिणामों की निर्मलता का विचार करना चाहिए, शायद वही अतिशय है। मैं तो सोचता हूं जब मैं सबसे पहले 1994 के चतुर्मास के बाद आचार्य महाराज की आज्ञा लेकर के चांदखेड़ी पहुंचा और वहां भगवान के दर्शन किए। 4 बजे हम 6 किलोमीटर दूर थे मंदिर से, और पता नहीं मेरे मन में यह आया कि 4:30 तक भगवान के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। लोगों ने कहा कि महाराज आप क्या सोच रहे हैं, 1 घंटे लगेगा कम से कम, अभी 6 किलोमीटर बाकी है। मेरे मन में तो आ रहा है कि 4:30 बजे भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, और 10 कदम भी आगे नहीं चले होंगे, और वहां से कुछ लोग जो कि चांदखेड़ी दर्शन करने आए थे वो आ गए। अरे हमने कहा आप कहां से, बोले हम यहां दर्शन करने आए थे, मालूम पड़ा कि आप आज आ रहे हैं तो हम भी आ गए। और महाराज वहां से कहां से जा रहे हैं, यहां से चलो, हम तो शॉर्टकट से आ गए यहां पर, यहां से तो कुल 2.5-3 किलोमीटर पड़ेगा। और बस ढलान थी, ढलान में आसानी से और ठीक 4:30 बजे पहुंच गए। मैंने दुनिया भर के अतिशय देखे हैं, लेकिन जो जीवन को शांति दे, जो जीवन को आनंद दे, चित चमत्कार से बड़ा दुनिया का कोई चमत्कार नहीं है। 5 इंद्रियों और मन से उपरत हो जाना, इससे बड़ा दुनिया में कोई चमत्कार हो सकता है क्या? और वही हुआ, आधे घंटे तक वहां बैठे रहे, बाहर आने का मन ही नहीं हुआ। और बाहर आकर के मैंने माथा क्या पैर क्या दबा दबा करके देखा, 150 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे, थके थे, लेकिन कोई कह तो दे कि कहां तकलीफ है, कहां दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये क्या चीज है, क्या भगवान ने हमारा दर्द दूर कर दिया? भैया हम लोग इस तरह की श्रद्धा भक्ति नहीं रखते। हमारी श्रद्धा तो यह है कि हम अपनी श्रद्धा से अपने मन को जितना निर्मल कर लेते हैं उतनी ही हमारे लिए जीवन में आसानी हो जाती है। वो हमारी भावनाएं अपने आप इस तरह की चीजों को हमारे सामने प्रकट कर देती हैं। इसलिए हम इस तीर्थ पर, इस अतिशय क्षेत्र पर बैठे हैं सब, हम यही भावना करें कि जो हमारे पूर्व में लोगों ने हमारे लिए धर्म करने के लिए स्थान निर्मित किए हैं, उन स्थानों का हम इस तरह लाभ लें कि जिससे हमारे अपने परिणामों में निर्मलता आवे, हमारे भाव बार बार जो है आने के लिए करें। इसलिए आने के लिए नहीं करें कि वहां पर सुविधा बहुत है इसलिए चलो रे मजा करेंगे, नहीं, वहां जाकर के भगवान के सामने बैठ करके और हमारे विचारों में निर्मलता आती है, चलो वहां जाकर के पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। भैया हमारे तीर्थ ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे जब वहां सब लोग अधिक से अधिक आकर के अपनी भावनाएं पवित्र करेंगे। वास्तव में ऐसे ही हमें अपने तीर्थों का उपयोग करना चाहिए, उनसे अपने जीवन में लाभ लेना चाहिए, इसी भावना के साथ कि हम सब लोग अपने जीवन में इन तीर्थों के माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल बनाकर अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। वावग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समथारस पान किया करते सुख दुख दाना